سنتمان شانت ہوں جن کی سنوں کی جانی مہامنڈل بدھان کا اور انتم دن ہے اور انتم جے مالا ہے. ہون ہار تم گن کتم جیو دوار نہیں ہو جیسے ہون ہار سے بولتے ہیں بولتے ہیں یہ لڑکا بہت ہون ہار ہے سب سے بڑھیا ہوتا ہے اسے ہون ہار بولتے ہیں. اس جگت میں سروشریشٹھ سدھ بھگوان ہیں اس لیے انہیں ہون ہار کہا ہے. اسے ہون ہار کہا ہے کہ تمہارے گنوں کا کتھن اس جیو کے دوارا میں نہیں ہو سکتا ہے, یوگا کے دوارا سمبھو نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کاٹ پاؤں سے انل تھل ناپ سکے نہیں کوئی. کسی نے کاٹ کا پیر لگایا ہو ہے نا, لنگ ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے نا, تو لکڑی کا پیر لگا لیتے ہیں. پھر وہ اگنی کے زمین کو جہاں آگ لگی ہو ایسی زمین پر وہ چلے گا تو لکڑی کا پیر جل جائے گا. تو کاٹ پاؤں سے انل تھل, انل ہے نا, انل مانے اگنی, اور یہ دیجیے انل ہو جاتا ہوں سمجھے نا, کہ کاٹ پاؤں سے انل تھل ناپ سکے نہیں کوئی. اسے کیسے ناپو؟ لکڑی کے کاٹ سے اسے ناپنے کی ہم کوشش کریں گے. میرا یہ پریاس جو ہے بھگوان کی بھکتی کرنے کا کوئی ایسا ہی ہے کہ میں تو لکڑی کا پیل جیسا ہوں اور وہ اگنی کے زمین اگنی کی زمین جیسے ہیں. سوکھم شدھ سوروپ کا کہنا ہے ویوہار, وستو کا جو شدھ سوروپ ہے سوکھم سوروپ ہے اس کا کہنا ویوہار کہلاتا ہے. یعنی ویوہار سے اس کا کتھن کیا جا سکتا ہے نشچت, مانے بالکل ہو بہو کتھن کرنا تو سمبھو نہیں ہے. اب ہم ویوہار سے بھی تمہارا کتھن کرتے ہیں لیکن ایک دقت یہ ہے کہ تم ویوہاراتی ہو. ہم ویوہار والے ہوتے نا تو ہم تمہارا ویوہار سے کتھن کر دیتے, اس لیے ہم لاچار ہیں. اب ہم تمہارا کتھن نہیں کر سکتے ہیں. اتنا کتھن کرنے کے بعد اور انت میں کہتے ہیں ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں, آپ بتا ہمارا رسی یہ کام نہیں ہے. گھنٹامبر مہاکاو ہے نا, تو پہلے ہی کاو سے بھگوان کی استھتی شروع کر دی. آٹھویں کاو میں پہنچے تو کیا لکھتے ہیں, متری پیناک سب سن سرنم مہید مارا بھٹی. کیا کہتے ہیں کہ ہے بھگوان اب میں آپ کا استعمال آرمبھ کرتا ہوں. ابھی تک کیا کر رہے تھے؟ کھاٹ چھان رہے تھے. آج ٹھنڈوں میں کیا کیا تم نے؟ وہ تو بری بری باتیں تو کی, ان کی مہیم ہی تو گائی تھی نا. ابھی لیکن ایسی باتیں کی تھیں کہ میں الپست ہوں, لوگ ہنسیں گے, پھر بھی میں بول رہا ہوں ہے نا. آستان توسب نمست سمست دوسم, تمہارا سمست دوسوں سے رہے پستبن تو بہت دور کی بات ہے. آستان سمست یا سمست دوستوں سے رہے تمہارا استبن تو آستان من رہنے دو رہنے دو. اس کا جو سنسکرت کا ارتھ ہے نا, ہندی میں ہم جیسا لکھ نہیں پاتے ہیں جو ٹون اس کی ہے. جیسے ہم کسی سے کوئی بات کہتے ہیں نا سیکنڈ بہت ہوئی, چل چلو ہٹو یہاں سے رہنے دو. آستان کا ارتھ ایسا ہے, بہت بڑی بات میں رہنے دو رہنے دو. آستان توستوں مست سمست دوسم, است ہو گئے ہیں سمست دوست جس کے. آپ تو سمست دوستوں سے رہے ہو تو آپ کا استعمال کرنا تو بہت بڑی بات ہے. सत्संग कथा भी जगदान दुर्तान हंसी और तुम्हारी ऊंची सीधी कहानी सुनाए तो भी जगत के जीवों के पापों का नाश हो जाता है। सत्संग कथा स्तरण थोड़ी हो जो कहानी है, सत्संग कथा भी जगताम दुर्तान हंसी दूरे सहस्त्र किरणा को कई प्रभु सूरज की बात तो रहने दो, क्या जरूरत सूरज की, उसकी एक किरण आएगी तो तालाब में रहने वाले कमलों को खिला देगी। तालाब में रहने वाले कमलों को खिलने के लिए पूरे सूरज की जरूरत नहीं है, एक किरण ही काफी है। तो तुम्हारी भक्ति स्मरण बहुत दूर की बातें हैं, क्या जरूरत है तो तुम्हारी एक कहानी भी कहें, उससे ही बहुत से पाप तो नष्ट हो जाते हैं। अभी तो ऐसी बात ना कह रहे थे क्या होता है, कैसा करने से क्या होता है, मत प्रेरी ऐसा मान कर क्या, तो तुम्हारी हम नाम भी नहीं उल्टा सीधा जो कुछ भी बोलेंगे तो भी हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे। मत प्रेरित नाश तब संशोधनम मरीद मारभ थे तनु दिया भी छोटी बुद्धि वाला होने पर भी बहुत से लोग ऐसा कर देते हैं घर में मूरख कई ना भक्तांबर के पद में मूरख अल्प सुतम का मूरख लिखा था, तनु दिया का भी मूरख लिखा होगा, उन्हें बस एक मूर्ख ही दिखता और कुछ नहीं दिखता। तनु दिया का मतलब क्या होता है, थोड़ी बुद्धि। अल्प सुतरा क्या मतलब है, थोड़े से शास्त्र पढ़े हैं मैंने, तो नहीं पढ़े हैं बुद्धिहीन थोड़ी है, और बिल्कुल नहीं पढ़े कहाँ कह रहे हैं आचार्य, थोड़े पढ़े हैं माने 150 पढ़े होंगे बस, क्या कह रहे 150 पढ़े होंगे, उन्होंने 50 ग्रंथ पढ़ दिए ना 5 साल में, तो बहुत थोड़े ना, सिर्फ द्वादशांग वाणी के सामने बहुत थोड़े हैं ना। तो वे अल्प श्रुत कह रहे हैं तो कोई ऐसा मामा, मैं श्रुत केवली नहीं हूँ, सिर्फ इतनी सी बात है क्या, ऐसी तनु दिया सिद्धों के ज्ञान केवल ज्ञान के समान है, चार ज्ञान के धारी गंधर्व देवी तनु दिया पी है। तो तुम ऐसा मत समझ लेना कि आचार्य मूर्ख होंगे, कुछ पढ़ा लिखा नहीं होगा हमने, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं, हम तो बहुत होशियार हैं, हम तो इतना बढ़िया करेंगे गजब हो जाएगा, क्यों यहाँ कहते हैं ना बस सूक्ष्म शुद्ध स्वरूप का, शुद्ध स्वरूप का सूक्ष्म कथन कहना व्यवहार है और तुम व्यवहार आती तो, इसलिए हम तुम्हारे गुणों का कथन करने में लाचार हैं, हम तुम्हारे गुणों का कथन नहीं कर सकते। ये कब कह रहे हैं, 2000 गुणों का कथन करने के बाद, तो जयमाला में अलग इतना करने के बाद में हम कह अब हम लाचार हैं, अब हम तुम्हारे गुणों का कथन नहीं कर सकते हैं। फिर भी पे जो कछु हम कहते हैं, फिर भी फिर पे लगा दिया, फिर भी हम कह रहे हैं कि तुम लाचार हो तो तुम्हें कौन बाध्य कर रहा है कि तुम कहो, है ना। शांति है तो भगवान अपने चित्त की शांति के लिए हम ये तुम्हारे गुणों का कथन कर रहे हैं। कल कहा था मेरे गुलाम गया समय से कर दो आदमी गए थे, शेर आ गया था, तो वो जो सुंदर दृष्टि है नौका मंत्र क्यों पढ़ रहा था, तो भगवान दौड़े दौड़े चले आएंगे और बता देंगे कि किसी देवता को भेज देंगे कि कोई उनका भगत बनी भेजे आ जाएगा, क्यों इस आशा से नहीं, केवल शांति हेत लिखा ना या शांति हेत भगवंत, वो तो नवोदार मंत्र में चित्त की शांति के लिए पढ़ रहा था। तो इतना तो काम होता है ना नवोकार मंत्र पढ़ने से कि चित्त में शांति तो आती है, घबराना नहीं, क्यों आती है, कितना पढ़ते हो तुम, क्यों नहीं आती चित्त में शांति, अरे भाई उपयोग पंच परमेश्वर में लगे तो विषय कषाय में से उपयोग खट जाता है, तो विषय कषाय में गया उपयोग अशांत उपयोग है, और उसमें से उपयोग हट गया उसका नाम शांत उपयोग है। यदि वो आपका हट गया है
तो शांत हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? नमोकार मंत्र के जपने से। अरे नमोकार मंत्र के नहीं जपो, जितना पत्थर 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 प्रोपयोग आत्मा में चला जाए तो भी हो जाएगी शांति। शब्दों का कोई खास महिमा है, अरे बीज अक्षर हैं और ऐसे हैं और यहाँ से हैं, अपूर्ण अक्षर हैं और वहाँ का है, और वो कोई यहाँ बता रहा था ना, तो कैसे हैं नवकार मंत्र के अक्षर, किताबें किताबें लिखी हैं। तो भाषा से होता है, शब्द तो जल है, अक्षर भी जल है और वाणी भी जल है। क्यों? इन तरह से उपयोग हटेगा तब आत्मा की शांति होगी, इनमें उपयोग लगेगा तब आत्मा में शांति होगी, है ना। कि हम फिर भी अपनी आत्मा की शांति के लिए तुम्हारे गुणों का कथन कर रहे हैं। तो भाई साहब, हमने एक एक बात में तुम्हें दस दस जगह सुनी। पहले कहा था ना कि मूल कर्म के उदय से दया दया होती है, इसलिए हे भगवान ने तुम्हें नमस्ते, तुमने मूल कर्म नष्ट कर दिया तो तुम्हें नमस्कार करता हूँ। कहा था और आज क्या कहा? हे भगवान, अरहंत और सिद्धों की भक्ति मूलवी कर्म के उदय का परिणाम है। तो मूलवी कर्म कौन है केला जी? अपना नंबर एक का शत्रु। वैसे तो आठ ही कर्मों को अपन शत्रु मानते हैं ना, लेकिन अरहंत साथ तो वैरी मेरी है ही नहीं, अकेला मूल ही है। समझिए भाई, मोह कर्म ही हमारा असली शत्रु है। और ये भगवान तुम्हारी ये भक्ति लिखा था ना, अभी पढ़ा था वो छंद, शांति जी ने बताया था ना कि मोह के उदय से अनंत की भक्ति होती है। कि 900 कोई बात का 73 छंद था, क्या था? तो 984 छंद था, है ना। थोड़ा पढ़ो। समझ में बहुत बड़ा तीर मार रहे। अरे तुम तो इस पढ़ रहे हो इसको, लेकिन जिसने लिखा है वो भी एक कह रहा है, हैं? वो तुमसे तो बड़ा ही होगा ना, उसका तो उपयोग इसमें लगा होगा ना। तो फिर तुम ये की एक बात को बार बार क्यों हमसे कह रहे हो? तो नीचे ही पंक्ति छठवीं पंक्ति है ना, क्या है? बार बार स्तुति करण में नहीं पुनरुक्त भंत। ये क्या है? एक काव्य का एक पुनरुक्ति नाम का दोष है। क्या नाम है दोष का? माने बार बार कहना, ये काव्य का दोष माना जाता है, समझे ना। न्याय शास्त्र में तो सबसे बड़ा दोष है, तो धारावाहिक ज्ञान बोलते हैं ना, पूरा प्रमाण हो जाता है। पहली देखो दो दो चार करो तो प्रमाण, और दूसरी देखो दो दो चार करो तो अप्रमाण, है ना। लेकिन भक्ति काव्य में पुनरुक्ति नाम का जो दोष है वो दोष नहीं गुण माना जाता है। ये लिखा दो, बार बार स्तुतिकरण में नहीं पुनरुक्त भनंत, उस पुनरुक्ति नाम का दोष नहीं आता है। देखो, मैंने कल जिस जयमाला का अर्थ किया था, आज भी मैं उसी जयमाला का अर्थ करूं तो सब उसमें खड़ा करते हैं, कल हो गया कल हो गया कल हो गया, कहेंगे कि नहीं कहेंगे, आगे आगे चलो आगे चलो। मैंने क्या कही थी? तुमने भी जो कल ही पढ़ी थी ये सब जयमाला, आज क्यों पढ़ रहे? तुमने तो पढ़े थे ना सब, विधान पूजा देवशास गुरु पूजा कल भी की थी, आज क्यों की? क्यों ये विधान एक अगले साल करा लिया था, दोबारा क्यों कराया? क्यों ये समय साल का प्रचंड तो भौक हो गया, अब प्रवर्तन साल चलाओ था, क्यों बोलते कि नहीं बोलते? तो देखो, स्वाध्याय में प्रवचन में पुनरुक्ति दोष है, गद्य लेखन में पुनरुक्ति दोष है, ये बात तो पहले भी आ गई थी, और भक्ति में पुनरुक्ति गुण है, होता कि नहीं होता? हम अभी एक बात को रिपीट करें तो आप आगे बढ़ो, और तुम केसरिया केसरिया चावल रंगवा दो, केसरिया केसरिया केसरिया, क्या है इसमें?
श्याम लंगवाद इसमें सौ कदम बोलते हो याद हो जाए इसमें क्या दम है, इसमें है क्या भगवान की भक्ति है ना, अपनों रूपी दोष नहीं है लेकिन भगवान की क्या चावलों की भक्ति दिखती है बोले ना क्या हो जाएगा, श्रीमद केसर के चावल लंगवा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो बच्चों का खेल नहीं है जो बच्चा उनसे कि मम्मी मेरे को क्या खिलौना दिलवा दो, मम्मी मेरे को ये करवा दो, इसमें तुमने बना दिया भगवान तुम्हें बन गए, तुम बालक बन गए भगवान तुम्हारी मम्मी बन गई, इसे भक्ति भक्ति क्या भक्ति पूछो कहते हैं गणेश वंदना भक्ति, भक्ति की तो परिभाषा दी है ना, तो बार बार शुद्धिकरण में नहीं पुनरुक्त भनन हो गया ना, जय स्वयं सतियाधारे देखो जितनी दफे जय शब्द आया है उतनी दफे स्वयं शब्द आया है, क्यों कि जैन दर्शन में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, जो कुछ भी जिसका हो रहा है सुख दुख ये स्वयं की गलती से हो रहे हैं और उन दुखों का मेटना भी स्वयं के पुरुषार्थ से ही होगा, इसमें भगवान का भी रंज मात्र योगदान नहीं हो सकता, और है तो कितना योगदान है मालूम आपको, एक राजा ने घोषणा करी कि इस तालाब के ठंडे पानी में मात के मिंडा में जो रात में डुबकी लगा के रहेगा तो उसको मैं इतनी इनाम दूंगा, एक आदमी जो डुबकी लगाया और सुबह राजा के पास गया कि मुझे इनाम दो, तो राजा ने कहा प्रूफ लाओ कि तुम डुबकी लगाए रहे, कैसे कैसे माने हम के साथ आपके महल के ऊपर दिया जल रहा था और मैं बराबर लाकर उसे देखता रहा, बिल्कुल जलता रहा, वो बुझा नहीं, बोले अच्छा उस दिए की गर्मी में ही आप कब आ गई, उस दिए की गर्मी से वो बर्फ जैसे ठंडे पानी में रह होगा, इतनी ऊपर रहा तालाब में से महल के ऊपर दिया जाता था, क्यों अब तुम्हें हंसी आती है, अब भगवान शुद्ध कहाँ विराजमान है, आया था ना शिखर राजद महंत लोग कहा कि शिखर राजद महंत में इतनी दूर है और हम यहाँ बैठे हैं और हम उनको अपने ज्ञान का ध्येय बनाएंगे, ज्ञान का ध्येय बनाएंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, वो सहयोग उनका कैसा है जैसा उस तालाब में डूबे हुए व्यक्ति के लिए दीपक की गर्मी, समझ ले इतना है, तुम हंसे तो ये हंसने लायक बात है कि भगवान तुम्हारे सहयोग से मेरा काम हो जाएगा, कुछ होने होने वाला नहीं है, धोखे में मत रहना, जय माला अब सत्य विधान पूरा हो रहा है और वो सौ दफे दोहरा के तुमसे कह रहे हैं कि जो कुछ काम होगा वो स्वयं से होगा दूसरे से नहीं, स्वयं शक्ति आधार योग, तो अपने योग का आधार अपने स्वयं की शक्ति ही है, जय स्वयं स्वस्थ आनंद भोग, आपने स्वयं ही अनंत अतिन्द्रिय आनंद का भोग किया है, इसे दूसरे ने नहीं कराया है, जय स्वयं विकास आभास भाव, जो आपके जीवन में विकास का आभास हुआ है वो स्वयं के से हुआ है, जय स्वयं सिद्ध निज पद प्रकाश, अपने निज के पद को तुमने जो प्रकाशित किया है वो स्वयं के प्रसाद से किया है, दूसरे के सहयोग से नहीं किया, तुमने दूसरे के सहयोग से नहीं किया और तुम किसी दूसरे को सहयोग दोगे, ये समझना मालूम बात क्या है, मेरी बड़ी बच्ची की शादी होनी थी और लड़के वड़के देखने जाते थे और लौट के आते थे, मेरे पिताजी मेरे से पूछते थे क्या हुआ बेटा, तुम्हें क्या करना हुआ होगा तो हो जाए, तुम उपदेश तो दोगे आध घंटा तो इतना नहीं कह सकते हो कि क्या हुआ क्या होना, पंडित क्या बन गए हमारे क्या समझने लग गया अपने को, मैंने कहा मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे सब बेटा बेटियों की शादी हो गई है, अब तू क्यों फिक्र करते हो, क्यों तुम्हारे कितने निपटाए थे, तुम्हारे पिताजी ने निपटाए थे, क्योंकि मेरे पिताजी के पिताजी का स्वर्गवास जब वे ढाई बरस के थे तब हो गया, दादाजी कम स्वर्ग हो गया था जब मेरे पिताजी ढाई बरस के थे तब उनका स्वर्गवास हो गया था, तो तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे नहीं निपटाए ना, तुमने ही निपटाए ना, तो तुम हमको इतना अयोग्य समझते हो, हम अपने निपटा लेंगे, तुमने अपना निपटाए सब काम स्वयं का स्वयं कर रहे लोग, अरे भाई हमारे तो थे नहीं इसलिए हमको ही निपटाना पड़ा था, लेकिन हम तो अभी जिंदा बैठे हैं ना, मैंने कहा हम नहीं तुमको हस्तक्षेप नहीं करने देंगे, क्यों कि तुम्हारा सहयोग लेते ही फिर हमारी ड्यूटी हो जाएगी कि हम अपने बाल बच्चों के बाल बच्चों को भी निपटाएं, और हम वो झंझट नहीं पालना चाहते, अपना बुढ़ापा खराब नहीं करना चाहते क्या, तो तुमने अपना निपटाओ और हम अपना निपटाएंगे और बच्चे अपना निपटाएंगे, बोलो हम हमारे बच्चों को रखे कर लोग क्यों रखने का रखे क्या करने क्यों, हम जिंदगी हम को यही यही करते रहना, हमको झंझट में पड़ने वाले नहीं है, और हमारा तो मार्ग ही है कि सब अपना अपना करो, अपनी मदद आप करो, किसी पथौनी कैसे भाई जब कहूं ना मिली तब घर से भाई, ये बुंदेलखंड की कहावत है, आज ये बुंदेलखंडियों की समझ में आई होगी कि नहीं आई होगी पता नहीं, बाकी के लोगों की समझ में तो आने का सवाल ही नहीं है, किसान लोग जब गेहूं बोते हैं गेहूं को पिसी बोलते हैं बुंदेलखंड में, तो वो कई साहूकार से बीज उधार लेके आते हैं, एक बेचारा आदमी के सबसे बाद में बोया गया तो किसी ने पूछा कि किसी पिछोनी कैसे भाई कि गेहूं को बोने में देर कैसे हो गई, तो उसने जवाब दिया कहूं ना मिली तब घर से भाई, क्या मतलब कि मैं सब साहूकारों के पास गया इससे मांगी उससे मांगी किसी ने नहीं दी, इसमें 15 दिन निकल गए, किसी ने नहीं दी कि नहीं दी तो बोई कैसे, कि जब किसी ने नहीं दी तो अपने घर में से निकाल के बोले, जब मुझे घर में रखी थी तो सबसे पहले बोलना चाहिए थी, कहने घर की कब हो जब तक साहूकारों की मिलती ऐसी किसी बुद्धि वाले होते हैं कि किसी पछोनी कैसे भाई कि कहूं ना मिली तब घर से भाई भाई मैंने कोई समझ में आ जाए, अब तो नहीं भूलोगे बुंदेलखंड भी तो नहीं भूलेंगे, कभी आज तक तुम मोक्ष में क्यों नहीं गए, कि भगवान भरोसे पड़े रहे इसलिए नहीं गए, दूसरे गुरु जी के भरोसे पड़े रहे इसलिए नहीं गए, क्यों तो अब आज कैसे आ रहे हो, क्या स्वयं से आ रहे हैं, तो जब भी जाना होगा आत्मा का कल्याण करना होगा स्वयं से करना होगा, दूसरों के भरोसे काम नहीं चलेगा, इस जयमाला का ये संदेश है बार बार स्वयं कहते थे, जय स्वयं बोध शंकर आपने संकल्प विकल्पों को टाला पर मैं एकत्व तो जीत छोड़ी विकल्पों को तोड़ा इसलिए आप बुद्ध बन गए, मैंने केवल ज्ञानी बन गए, कैसे बने स्वयं अपने संकल्प विकल्पों को तोड़कर तुम स्वयं बुद्ध बने हो, रागादि द्वार रागादियों को जलाकर तुम स्वयं शुद्ध हुए हो, है ना, जय स्वयं सुगुण आता निर्मल आचरण को धारण करके तुम स्वयं सुगुण हुए हो, जय स्वयं सुखी तुम अक्षय और अपार सुखी भी स्वयं से ही हुए हो, किसी ने तुमको पंचमात्र सुख मुफ्त में दे नहीं दिया है, चक्रवर्तित्व तो कभी भीख में नहीं मिलता, वो तो पुरुषार्थ से प्राप्त किया जाता है, भीख में तो जूठी रोटियां ही मिलती हैं, समझा ना, और चक्रवर्ते कभी भूख में मिल भी जाएगा भीख में तो उसकी रक्षा कौन करेगा। अरे ना पाने के लिए ही अकेला पुरुषार्थ नहीं चाहिए, उसकी रक्षा करने के लिए भी पुरुषार्थ चाहिए। ऐसा मोक्ष तुम्हें भीख में मिल भी गया तो वहां अनंत काल तक तुम वहां ठहरोगे कैसे, खेलने है ना, आखिर तो अपने ही भरोसे काम करना पड़ेगा।
जय स्वयं चतुष्ट राजमान अपने अनंत चतुष्ट से तुम जो शोभायमान हो ना, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, इनको अनंत चतुष्ट कहते हैं। ये अनंत चतुष्ट एक स्वचतुष्ट भी होता है, उसका स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव, वो स्वचतुष्ट है। और ये अनंत चतुष्ट है, स्वचतुष्ट हरेक द्रव्य का अपने अपने में है, और अनंत चतुष्ट अनंत भगवान और सिद्ध भगवान के ही है। कि तुम अनंत चतुष्ट से राजमान मान शोभामान हो, वो स्वयं ही हुए हो। जय स्वयं अनंत सुगुण निधान, अनंत गुणों के निधान खजाने तुम बने हो तो स्वयं से ही बने हो। जय और तुम जो स्वयं अयोगी बने हो, अनंत काल तक के लिए स्थिर हो गए हो, स्वस्थ हो गए हो, स्वस्थ माने बिल्कुल निरोग है, स्व माने अपना आत्मा, और उसमें स्थित हो जाना उसका नाम है स्वस्थ। क्या स्वस्थ माने, स्व माने शरीर थोड़ी होता है, स्व माने तो आत्मा हो जाए, और उसमें स्थिर हो जाना, स्थिर हो जाना माने उसको ये जानना कि ये मैं हूं, उसको ये मानना कि ये मैं हूं, और उसी के ध्यान में लीन हो जाना, इसका नाम है स्वस्थ होना। बोला अब उन्हें कौन सी दवाई से होंगे, योगा करने से होंगे, ये भगवान तुम मनोज्ञ हो, मनोज्ञ योग के ध्यान करने वाले हो, वो स्वरूप से ही हो, स्वयं ही हो, स्वयं से ही हो। जय स्वयं स्वास्थ्य निज ज्ञान पूरे, हे भगवान आप निर्मल ज्ञान के धनी हो तो स्वयं से हो, अनंत वीर वाले हो, और कर्मरूपी शत्रुओं के वज्र को आपने चूर्ण कर दिया है तो स्वयं से किया है। अब भगवान का मामला पलटता है, मेरा शत्रुओं को तो लाइन देखती है ना, ये मामला यहाँ से पलट रहा है, इसलिए मैं नहीं पलट सकता। जय महामुनि ने आराध्य जान, जय संतन मन आनंद कार, जय सुर गण गावत, हे भगवान तुम महामुनियों के आराध्य हो। मुनिराज तुम्हारा ध्यान करते हैं, सारी दुनिया मुनियों का ध्यान करती है, न करती हुई और ध्यान रखती तो है ना, और महामुनि उनका ध्यान करती है। गुरुदेव ऐसा बोलते थे, 96,000 पत्नियों के चित्त में और 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं के चित्त में चक्रवर्ती विराजता है, लेकिन चक्रवर्ती के चित्त में वे रानियां और मुकुटबद्ध राजा नहीं विराजते हैं, सिद्ध भगवान विराजते हैं, अरहंत भगवान विराजते हैं, और अरहंत भगवान के चित्त में चक्रवर्ती नहीं विराजते हैं, अपना सरकारी भगवान आत्मा विराजता है। मोक्ष पावर की बताई थी ना, 103वीं गाथा पढ़ना बहुत अच्छी है। काम गया, तुम महामुनियों के आराध्य हो, जय निपुणमति, तत्वों के तत्वों को जानने वाले निपुणमति हो, जय संतन मन आनंद का, जो संत लोग आपके चित्त का में विचार करते हैं तो उनके चित्त में आनंद पैदा होता है, इसलिए कहा जाता है कि तुमने उनके चित्त में आनंद पैदा किया। जय सज्जन चित्त बल्लभ अपार, सज्जनों के चित्त के लिए अत्यंत प्यारे हो तुम। जय सुरगण गावत हर्ष पार, और देवता लोग
तुम्हारे दोनों का दान करके बहुत खुशी होते हैं। और जय कभी यश कथन न कभी अघात, कभी लोग भी तुम्हारे गुणों का यश का कथन करने में अघाते नहीं है। अखाना जानते बिल्कुल अब नहीं चाहिए, बस अब नहीं चाहिए, तृप्त नहीं होते हैं। अब देखो फिर मामला पलटता है, तुम महातीर्थ भवि महातीर्थ भवि तारणी तरण तरण ठीक है बस भंग होता ना, तुम्हें महातीर्थ भवि तारण हित ऐसा अपन तारण कर लेंगे ना, क्यों घबराते हैं। कहते हैं कि तुम महा हम तीर्थों पे क्यों जाते हैं, हमारा कल्याण हो जाएगा। गंगा में क्यों नहाते हैं, गुरु भी नहाते मानते हैं ना, आपका सागर स्नान मगर है ना, तो हमारा कल्याण हो जाएगा। तो कहते हो भव्य जीवों के कल्याण करने के लिए तुम ही एकमात्र महातीरथ हो, माने ये तीरथ तीरथ नहीं है। मेरी एक छोटी सी किताब है 32 पेज की, उसका नाम है सम्मेलन शिखर, पढ़िए कभी। उसमें मैंने तीर्थ किसे कहते हैं ये बताया है। ये जो तुम्हारे पर्वत मर्वत है ना, ये तो बहुत बाद में नंबर आया है। शास्त्रों के प्रमाण पेश कर करके मैंने कहा सबसे पहले आत्मा को तीर्थ कहते हैं, समझे ना। फिर सब बताते बताते किने किने कहते हैं, फिर जिन्हें आप आज तीर्थ कहते हो वे कहाँ तीर्थ हैं। जो लोग स्वयं संसार से पार हुए और पार होने का उपदेश दिए, असली तीर्थ तो वे थे। अब वे जहाँ खड़े हो गए ये तो इसलिए तीरथ नहीं कर सका है, समझिए ना, कि काय के तीरथ है। देवी खड़े होते तो वे कभी यहाँ खड़े हो गए थे, बस कर उपचार में उपचार में उपचार में उपचार में उपचार तीरथ है। जो स्वयं पढ़े और दूसरे के तारने में निमित्त हो उन्हें तीरथ कहते हैं। एक 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 जमीन कैसे तीरथ हो सकती है, घबराना नहीं। और यदि ये है भी तो आज तो तीर्थों की हालत क्या है, हर तीरथ भी अनुच्छादार बना हुआ है। किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं मैं, राजस्थान सबसे पहला पकड़ा जाएगा। अब मुझे राजस्थान में रहना है अभी और 2-5 साल, समझ में आया नहीं। सब जगह ये दे दो ये मिलेगा ये मिलेगा, ऐसे ही पंडित वैसे मिलेंगे, ऐसे ही सब मिलेंगे, वो यही बताएंगे तुम्हें ये करो ये होगा, ये करो तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा, हम ये कर देंगे, ये जपो मां ये करो। क्यों कोई आत्मा की बात कहीं कहने वाला हो तो बताओ है। जो असली तीरथ है ना आत्मा तीरथ है, वो किताब मैंने जब वो सम्मेलन चक्र का झगड़ा चल रहा था ना दिगंबर श्वेतांबर का, सब लिखी थी। तो अपने दिगंबरों ने दिन भर का उपवास किया था तीर्थ के लिए, और वो उपवास सुबह 9 बजे शुरू होता था और शाम को 5 बजे खत्म हो जाता था। सब नेता लोग बैठे हैं, सब जानते हैं, फिर ऐसे ही किया था ना। तो जयपुर में भी हुआ था राम लीला के मैदान में सामूहिक उपवास, 9 बजे शुरू हुआ, फिर उसमें तय हुआ कि साहब अभी सारी समाज इकट्ठी हो जाएगी, तो नेता लोग आएंगे, फिर भाषण देंगे, चुनाव का मौका चल रहा है, और फिर वोट मांगेंगे। सब देव कहीं किसी का भाषण नहीं होता, 8 घंटे भगवान की भक्ति होगी। क्यों, और यदि किसी का प्रयत्न होगा तो डॉक्टर भारे लगा होगा, भाग्य के निर्णय हो गया उसमें कमेटी में, तो 7 घंटे 8 घंटे में 1 घंटे मेरा प्रयोजन और 7 घंटे भक्ति, और भक्ति भी ऐसी बांट दी गई कि 4 घंटे आधी मैं सोलह मन समारा कराएगा और 4 घंटे में दूसरे लोग कराएंगे। अपने तो कोई ऐसी मांग मांग की नहीं थी, लेकिन मिल गई। तो वहां हुआ था, वहां मैंने जो भाषण दिया था उसी के एक किताब लिखी थी, और वो मैंने वहां पर 5,000 की 10,000 किताब बांटी थी फ्री में सबको, अभी भी नीचे होगी किसी को लेना हो ले सकता है, फ्री ले सकते लेना फ्री दे देना मुझे जो लेना चाहे सुनो। और फिर मैं बताऊं उस भाषण का इतना प्रभाव पड़ा क्योंकि श्वेतम में लोग उसमें आ गए थे देखने के लिए क्या करते हैं जी हमारे दुर्ज, तो वो तो पूजा भक्ति थी उसमें कुछ होना ही नहीं था और भाषण मेरा था, तो श्वेताम्बर भाई मेरे पास आए कि साहब वो भाषण जो आपने रामलीला मैदान में दिया था वो उसे हमें अपने यहां भी कराना और वो किताब बांटी थी वो हमें भी बांट ली है, तो मेरी किताब उनने भी 5,000 ले जाकर के अपने बांटी और मेरा भाषण करवाया, आप समझ लो कैसा होगा वो भाषण। और दिगंबर ने भी बांटी, दिगंबर भी खुश हो, दिगंबर भी साहू रसूल कुमार का एक कमेंट था कि कोई भी कहा इसमें यहाँ पर अपनी जो जो झगड़ा जिसके लिए उपवास कर रहे वो तो आए नहीं, झगड़ा तो आए नहीं क्यों रंजी भाई। तो साहू जी ने कहा बहुत बढ़िया एक मुझे कि भैया विद्वान लोग तो ऐसे ही करेंगे झगड़ने के लिए अपन तो होंगे ना बस मैं एक बात बोलता हूँ उस किताब में जो लिखा है कि कोई अपनी अम्मा से अम्मा कहे तो किसी को एहसास होता है, यदि कोई अपनी पत्नी को पत्नी कहे तो झगड़ा हो जाएगा समझना, हमारी पत्नी को तो पत्नी नहीं कह सकता अपनी, यदि हमारी अम्मा को अम्मा नहीं कहे तो हमें कोई तकलीफ नहीं है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि संवेद शखर तुम्हारी पत्नी है कि अम्मा, तो दूसरे भी उसे अपना कहें तो तुम्हें क्या तकलीफ है, सारी दुनिया उसे अपना तीर्थ माने वहां आगे पूजन करे भक्ति करे समझे ना, व्यवस्था जमा लो सब जन मिलकर जमा लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये हमारा है ये तेरा नहीं है क्यों, अपनी तो बहुत बढ़िया भक्ति होती है अभी करेंगे ये लोग, मैं आता नहीं जाना क्यों, मैं वहां के घर से सुनता हूँ क्योंकि यहाँ आऊँ तो मैं करने नहीं दू पूरी में तो तीरथ हमारा तीरथ हमारा तीरथ हमारा तेरा क्या तीरथ है, चलो कुछ समय से पार्श्वनाथ का होगा भैया सबका होगा तेरा क्या हुआ क्यों, तीरथ हमारा तीरथ हमारा तीरथ हमारा तीरथ हमारा भक्ति होगी तीरथ किसे कहते भी जानते नहीं, महावीर से न कहा यहाँ पर तुम्हें महातीर्थ भव्य करण हित तुम ही आत्मा का कल्याण करने के लिए महान धर्म हो, तुम्हें महामंत्र विघन जाय ये दिखने कर दिया ये दिखन लंदेना घा पूरा है इसको बोली लंदेना शब्द तद्भव तुम महामंत्र हो विश्व रूपी विघ्न को जलाने के लिए पहले जमाने में मंत्र होता था ना तो मंत्र घूमते थे विश्व पर जाता था, क्या करो तुम महामंत्र हो ये विघ्न रूपी जो विष है उसको जलाने के लिए तुम महामंत्र हो समझे ना, और तुमने कहा गया अग रोग रसायन कहो सार अगमान पाप रूपी रोगों को नष्ट करने के लिए तुम सर्वश्रेष्ठ रसायन हो, आयुर्वेद में रसायन होती है दवाइयां सर्वश्रेष्ठ दवाइयां होती हैं तो तुम रसायन हो, अगमाने क्यों भैया बताया था ना एक दिन, अब आज तो आर्जन की परीक्षा होनी है ना तो अग बताया था ना एक दिन अगमाने क्या है, पाप तो है पाप पाप माने क्या अगमान अगमाने जो पाप है उसका अर्थ क्या बोलो मत ब्रो, घा माने आत्मा और जिसने आत्मा को नहीं जाना नहीं पहचाना उसका ध्यान नहीं किया वे सब घा से रहते हैं वे सब पापी हैं, अब आगे बिंदु भाई ऐसा है ना पहले तो अपने पिताजी को क्या बोलते थे फिर पिताजी कोई दादा कोई कुछ कुछ अच्छे अच्छे नाम बोलते थे ना, अब धीरे धीरे आगे डेड एक जिंदा नहीं मर गए डेड हो गए फिर पापा हमने चंद्र में लिखा है समय सार में ते अद्यापि पापा पापा माने पाप पापा पापहु पापा और संत के डाक्टर रामा रामो रामा तो बहुवचन है ना तो पापों के समझा पापा माने पापों के पिंड और वो हमें पसंद आता है तो ये अद्यापि पापा आता ना कहना समय सार में एक देखो क्या लिखा यहाँ पढ़ रहे हो ना पाप क्या गया ये मैं भूल जाता मैंने अभी रोग रसायन तो हो गया ना तुम वहां होगा वो निकल गया मुंह लेके तुम्हें जितने भी सांस हैं सुनो उनके एक मात्र गे आपके ज्ञान है ना तो उनके गे हो और यदि वे तुम्हारे गुणगान गाते हैं तो उनके गे दो गे हो गए एक छात्रा वाला गया और एक काका वाला का तो गे माने शास्त्रों में जितने गीत गाए हैं वो तुम्हारे ही गाए हैं ठीक है वैसे गे हो गए और वो समझ महाशास्त्रों के द्वारा जो समझने लायक हो गे माने समझने लायक तुम ही हो तुम महाशास्त्र के तुम महाशास्त्र के मूल गे का भी कह रहे भैया तुम महातत्व हो उपाधे तुम ही सर्वश्रेष्ठ तत्व हो ये तत्व हो ना उपाधे तत्व हम तिहू लोक महामंगल स्वरूप हे भगवान तुम तीन लोक में महामंगल हो महंत आनंद करने वाले हो तुम तीन लोक के सर्वोत्तम हो तुम अनुपम हो तुम्हारी उपमा की हृदय नहीं दी जा सकती है तिहू लोक सर करते हैं शुरू में जो मूल तत्व ज्ञान की चर्चा करते हैं असली निश्चय भक्ति की बात करते हैं सच्ची सच्ची बात कह देते हैं कि मेरे बस की कुछ नहीं है मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ ख्याल में आई ना और तुम एक दूसरे के कर्ता धर्ता नहीं हो कि बराबर सब बात तुम पर के करता नहीं ना ये बता देते हैं अब अंत में तो थोड़ा व्यवहार भी तो निभाना चाहिए ना ना तो फिर कहते हैं तुम ऐसा करो ऐसा कर दो ऐसा किया तुमने थोड़ा थोड़ा कह देते हैं फिर अब हमारे दिमाग में वो अंत का करता है पहले किसे भूल जाते हैं सुनो तीन चाहिए ना तीन लोक शरण अग हर महान तुम तीन लोक में परम शरण भूत हो पापों को हरने में महान हो और भव्य जीवों को परम पद जो सुख का खजाना है वो देने वाली हो देत आ गया भव्य देत उनके बाद शुरू हो गया ऊपर तो कह रहे थे कि कोई किसी को कुछ नहीं देता है सब स्वयं हो ये स्वयं स्वयं कितने कहा था फिर परस्पर विरोध लगता तो मैंने कहा अपने एक बनियों के यहाँ एक बच्चा खाता होता है तो जब हिसाब नहीं मिलता है तो बच्चे खाते में जमा कर देते हैं बच्चे खाते में नाम मार देते हैं जैन दर्शन में एक बच्चा खाता है तो जहां हिसाब किताब बैठे नहीं तो उसमें डाल देना ना संसार महासागर अथार तू काल अनंत दियो बता ये तीन पंक्तियों में बात समाप्त होती है ये संसार अथाह महासागर है इतना बड़ा समुद्र है कि जिसकी थाल को पाया नहीं जा सकता है जिसमें जीव निरंतर धारा प्रवाह रूप से जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण करते रहते हैं एक क्षण भी फर्सों की गंगा में धारा बहती रहती है ना एक क्षण भी रुकती नहीं है तेजी से पहाड़ी एरिया में ऐसे जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण धारा प्रवाह रूप से होते रहते हैं ऐसा सो काल अनंत दियो बिता ऐसे ऐसे मैंने अनंत काल बता दिया जन्म हमारा जन्म हमारा जन्म हमारा है ना तामे ढकोर दुख रूप खाए, और बस उसमें पहाड़ी एरिया में नदी गया बहुत तेजी से, यहाँ टकराती है, यहाँ टकराती है, बार बार ढकोरे खाती है, ठोकरें खाती है ना, तो मैंने बहुत दुख के ढकोरे खाए हैं। इसलिए हे भगवान मो दुखी देख, मेरे को दुखी देख कर थोड़ी दया कर, पूरे दया हृदय में दया लाओ, समझ गए ना। इन्हें पार करो कर गृह पान, क्या करूं दया लाके भैया तुम बता दो कि मुझे हाथ पकड़ के पार उतार दो। ये पहले नदी नाले होते थे ना, अब तो पुल बन गए, ये हो गए, तो हमने हमारे जमाने में होते थे, हम जाते थे तो नदी को पहले करे पार करना पड़ता था, तो बड़े लोग होते थे बच्चों का हाथ पकड़ करके ले जाते थे ना पार उतार करके, तो कहते भगवान इस संसार समुद्र से तुम मेरा जरा हाथ पकड़ के उतार, उस जमाने की बात है, हाथ पकड़ के उतारा जाता था। दयान इन पार करो कर ग्रहण पान, मेरा पान माने हाथ ग्रहण करके पार कर लो, माने मेरे से पानी ग्रहण कर लो, ये पानी ग्रहण संस्कार होता है क्या, क्या पानी ग्रहण क्या है, पानी ग्रहण का क्या अर्थ होता है, क्या पंडित जी आप इतना नहीं जानते, आपका हुआ कि नहीं हुआ था, अरे हुआ नहीं होता तो अभी तक क्या सब कुछ सुधर, पानी माने हाथ और ग्रहण माने ग्रहण करना, वो जो हथलेवा होता है ना ऐसा, बस उसका नाम पानी ग्रहण है, बस बस बाकी कोई शादी फादी नहीं है, लड्डू मड्डू खाना कोई शादी फादी नहीं है, समझे ना। तो लड़के के हाथ पर लड़की का हाथ, लड़की के माँ बाप ने लड़के दोनों ने मिला करके रख दिया, मिला दिया खाली नहीं ना, माने उनकी मंजूरी से हुआ है, भाग के नहीं हुआ है, और उसके नाम उसका नाम शादी, और कुछ नहीं, वो साठ मास पहले भी शादी शादी नहीं है, हत लेवा बोलते ना इसे, हत माने पानी लेवा माने ग्रहण। अब देखिए जो हाथ पर हाथ रखा जाता है ना, तो हाथ पर हाथ दो तरह से रखा जाता है, एक तो ऐसा और एक ऐसा, समझ में आया, समझा। दूसरा एक अपने हाथ पे हाथ रखा जाता है और दूसरा दूसरे के हाथ में हाथ रखा जाता है, दूसरे के हाथ में हाथ रखे तो फंसे और अपने हाथ में हाथ रखे तो मोक्ष है। देखो अनंत भगवान बैठे ना हाथ में हाथ रखे, नीचे देख रहे ना जाकर श्रीमंदर परमात्मा बैठे ना मंदिर में, हाथ पे हाथ रखे बैठे के नहीं, लेकिन ऐसा नहीं रहना, नहीं फंस जाओगे, ऐसा हाथ बंधन का प्रतीक है और ऐसा हाथ छूटने का प्रतीक है, समझ रहे हैं ना। कहते ना भैया ठंडा पानी जैसा चल रहा है कि हम तो हाथ से हाथ रखे जैसे, मैंने कुछ नहीं चल रहा तो जगत का सारा ठंडा पानी बंद हो जाए उसका नाम है हाथ से हाथ रखना, क्या, और अपने हाथ से हाथ रखना और पराए हाथ से हाथ रखना, समझ गए। वो तो हंसे तो फंसे गए काम से आने, ऐसा ही है ना, क्या लिखा तो पढ़ो पढ़ी कर ग्रहण पान, मेरे को दुखी देखकर हृदय में दया लाकर खुद कह रहे थे कि दया मोहे कर्म के वजह से होती है और तुमने मोहे कर्म का नाश कर दिया और कहते थोड़ी दया मेरे लिए ले आओ, है ना। इन पार करो कर ग्रहण पान और मुझे हाथ पकड़ करके संसार समुद्र से पार कर दो, तुम ही हो इस मेरे भगवान, तुम ही इस पुरुषार्थ के काबिल हो कि मुझे हाथ पकड़ के पार ले जा सकते हो, बाकी के जो देवता कहलाते हैं वो अशक्त हैं और पांच इंद्रियों के भोगों से में लगे हुए हैं और उन रोगों भोग रूपी रोग में खुद रोगी हैं। मैंने बहुत पहले एक चौपाई लिखी थी, पढ़ी है कहीं याद है दादा मुझे, नारी रूप धार कर रहिए, सोलह सत्रह वर्ष की उम्र में लिखी थी, नारी रूप धार कर रहिए ब्रह्मा पंचानन कर लिए, कहानी मालूम है कि नहीं मालूम, कि ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे थे और इंद्र का आसन कब गया, वो घबराया बेचारा, उनके यहाँ इंद्र बहुत घबराता है, कोई भी तपस्या करता है तो डर लगता है मेरा पद छिन जाएगा, उसे दृष्ट करो, बस इंद्र का काम एक ही है। तो उसने क्या किया, देवांगना भेज दी तो नाचने लग गई। तो ब्रह्मा जी के चार मुख थे तो यह सामने नाचती थी तो आगे चुपका करके देखने लग गए, तो बगल में नाचने लग गई। तो ऐसी गर्दन मोड़ते हैं तो लोगों क्या कहेंगे, शर्म लगती है ना, यहाँ की आंखें खोल ली, तो यहाँ पहुंच गई वो, यहाँ की आंखें खोल ली, फिर यहाँ पहुंच गई, यहाँ की आंखें खोल ली, फिर ऊपर पहुंच गई आकाश में। अब क्या करें, ऐसा करके देखें। तो उन्होंने ये गधे का मुंह बना लिया और ऊपर की आंखें खोल दी। ऐसा साल मुझे काफी है कहानी, मैं नहीं कर रहा हूँ अपनी तरफ से, उसको तो मैंने उस वक्त लिखा था जब पारोनी में था तब। नारी रूप धार कर रहिए ब्रह्मा पंचानन कर लिए, विष्णु लक्ष्मी के आधी, समझ गए, शंकर हिम कन्या लवली। अब समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के पीछे पीछे दौड़े दौड़े करते हैं और शंकर भगवान हिमकन्या माने पार्वती पर्वत की बेटी उसके पीछे पड़े फिर रहे हैं। जीतन हारे नारी के प्रभु आप ही एक, आयो तेरी शरण में तुम ही राखो ते। लिखा तो क्या लिखा, यहाँ पर तुम ही हो इस पुरुषार्थ योग, अरु हैं असक्त करी विषय रोग। समझ में आ गए, पान बता दिया, जो जगत में देवता कहलाते हैं तो सब ऐसे ही है। मैं वहाँ अशोक नगर में संस्कृत पढ़ाता था तो उसमें एक स्वर्ण पुष्प नाम की किताब थी, उसमें सबसे मंगलाचरण था। तो मंगलाचरण ने ऐसा अथाग शंकर जी भगवान को नमस्कार किया था और शंकर भगवान को नमस्कार ऐसा किया था कि आप योगियों में सर्वश्रेष्ठ हो, क्यों, क्योंकि आपने कामदेव को भस्म कर दिया था। आप भोगियों में सर्वश्रेष्ठ हो, क्यों, क्योंकि पार्वती जी आपकी जान पर रखी है। उस छंद में ऐसा लिखा था, तो आप योगियों में भी श्रेष्ठ भोगियों में भी श्रेष्ठ, आप तो दो नंबर पर कहीं रहते ही नहीं। तो मैं वहां पढ़ाता था तो मेरे आधे लड़के तो जैन थे और आधे अजैन भी थे, सरकारी स्कूल था, समझे ना। तो वो कुछ लड़के बदमाश होते हैं ना, लड़के तो सभी बदमाश होते हैं, कुछ कर पाते हैं तो बदमाश। गुरु जी एक प्रश्न है, क्या बोलो बेटा, क्या प्रश्न तुम्हारा, इसने तो ये बात लिख सकती है, तो वेदांत तो जैनी है, ये मानने वाले नहीं है, रोजी नामंत्रण प्रश्न करते हैं, वेदांत तो ये बात सच्ची है। मैंने कहा देखो बेटा, मैं यहाँ पर लैंग्वेज का अध्यापक हूँ, मैं भाषा पढ़ाता हूँ, मैं यहाँ फिलोसफी नहीं पढ़ा रहा हूँ। इस श्लोक का जो अर्थ मैंने बताया है बिल्कुल सही है। क्या वो बात सही है कि नहीं है ये मैं नहीं जानता, क्या, लेकिन इस छंद का जो अर्थ ये है वो मैंने बताया है वो 100% सही है। अब देखो, सुर नर पशु दास कहे हनुमंत, भगवान तुम्हारे देवता लोग बहुत भगत हैं, मनुष्य लोग भी बहुत भगत हैं और पशु लोग भी बहुत भगत हैं, पर भगवतों की गिनती तो अनंत है, तो उनमें एक संत का नंबर भी लगा देना, संत कवि, संत माने साधु नहीं, एक कवि का नाम संत था जिसने संविधान लिखा है, तो उनमें भी है एक जान संत, इस संत कवि को भी लाख कर अनंतों में एक नंबर मेरा भी लगा लेना। बल इतनी सी बात मैं कहता हूँ, जल बिगन जल दी है
God.
भगवान तुम विघन जलधि, विघन विघ्न है समुद्र, जलधि माने समुद्र, और उसके जो जल है समुद्र का जल, उसको तुम हनन, उसको नष्ट करने के लिए तुम पवन हो, हवा है ना, तो बाद बादल समुद्र के पानी को उड़ा ले जाती है ना, तो बादल बना देती है। ये पानी कहाँ से रहते हैं आकाश में? बादल आते हैं तो पानी कहाँ से आता है आकाश में? क्या समुद्र में से जाता है? जहाँ होगा वहीं से तो लाएगा। क्या कौन लाता है? एक सूर्य गर्मी गर्मी से ऊपर ले जा भाप बनाता है और हवा उसको उड़ा के यहाँ ले आती है। तो क्या कहते हैं कि विघन रूपी जो समुद्र, उसका जो जल, उसको हनन, उसको नष्ट करने के लिए तुम पवन हो, हवा हो, पवन बल और सकल पाप मल जारण हो। यदि पाप है, यदि वो मल है, तो उन सभी पापों को जालने जलाने वाले तुम अग्नि, मतलब तुम हवा भी हो और अग्नि भी हो, और अनिल भी हो और अनिल भी हो। क्या पाप रूपी नल को जलाने के लिए अग्नि हो और उसको समुद्र को सुखाने के लिए हवा हो। जय मोह उपल हन, और मोह रूपी पर्वत, उपल माने पत्थर होता ना, पत्थर पर्वतों का होता है, उसको हनने के लिए, नष्ट करने के लिए तुम वज्र के समान हो। वज्र तोड़ सकता है उसे। असल दुख अनिल ताप मल कारण हो, कि ताप के रूपी मल को जलाने के कारण, ताप जल कारण हो, कि असल दुख रूपी जो अनिल माने अग्नि, उसके ताप को नष्ट करने के लिए आप जल हो, जल रूप कारण हो गया। अब जो पंगु चढ़े गिरे, लंगड़ा आदमी पर्वत पर चढ़ सकता है, गूंग भरे स्वर, गूंग आदमी गा सकता है, अभुज सिंधु तर कष्ट भरे, और जिसके दो हाथ कट गए हैं वो समुद्र में तैर के पार करना चाहते हैं, ये तीन काम कितने असंभव है। कौन? कि लंगड़ा आदमी पर्वत पर चढ़े, गूंगा गावे, और जिसकी भुजाएं नहीं है वो समुद्र को तैर के पार करे। जैसे तीन काम बहुत कठिन नहीं, असंभव है, क्यों? तुम्हें छुट्टी काम, तुम्हारी भक्ति का काम ऐसे ही असंभव है। क्या देखा? क्यों? तुम्हें छुट्टी काम साफ है क्या? नहीं है। महालज काम बहुत शर्म की बात है, महान लज्जा का स्थान है ये। तुम्हारी भक्ति करना बहुत बेशर्मी का काम है। ऐसा लिखा इसके ऊपर, कोई दूसरा पंडित सारे हिंदुस्तान में जाना, दूसरा आज कर देगा तो मेरे पास लाना। क्यों? तुमने छुट्टी काम महालज काम, इतनी हिंदी तुम लोग भी समझते हो ना, कि ऐसे तुम्हारी स्थिति का काम महान लज्जा का काम है। सुअंत संत परनाम करे, ऐसा सोच के ये संत कवि अब तुम्हें अंतिम प्रणाम करता है। नमस्कार, पधारो महाराज, अब मेरी व्यक्ति बहुत हो गया। क्या हम लोग जब जो आदमी ज्यादा सेंट जाता है ना, हम देखते समझाते समझाते हम परेशान हो जाते हैं, फिर भाई साहब हमारे व्यक्ति नहीं है, हम आपको नहीं समझा सकते हैं, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आप पठार हैं। तो मैंने पंडित जी से हाथ जोड़वा लिए। समझ गया ना, ये महाकाम है, मैं अंतिम प्रणाम तुम्हें करता हूँ, अब मैं और कोई बात तुम्हारे बारे में नहीं कहना चाहता हूँ। हो गया चूना गया। तीन लोक चूना मणि सदा रहो जय बन। फिर शुरू हो गया, हे भगवान तुम तीन लोक के चूना मणि हो, तुम्हारी सदा जय हो गए, तुम विघ्नों को हरण करने वाले हो, मंगल को करने वाले हो, ये संत कवि तुम्हें हमेशा नमस्कार करता है। पूरण मंगल रूप महा यह पाठ है, मंगल रूप महा, यह जो शुद्ध के मंगल महा विधान पाठ है, सत्य विधान पाठ बोलते हैं ना, ये महान मंगल स्वरूप है, शुद्धों के गुणों का स्तवन है ना, इसमें महान मंगल स्वरूप है, इसमें कहीं नहीं लिखा है कि तुम्हारा देह मिट जाएगा, जुकाम ठीक हो जाएगा, देह हो जाएगा, कुछ नहीं लिखा कहीं। सूर्यचंद पढ़ दिया आपने, संत कवि ने लिखा है, वे लिख सकते थे ना क्या क्या होगा, कुछ नहीं लिखा कहीं। सरस है, सुरुचि रुचिपूर्वक है, सुख करने वाला है, उसमें भक्ति का खाद है। और अब सब अर्थ में चूक हो तो हो गई, हमने भी शब्द में और अर्थ में भी चूक गया हूं, चूक भी सकता हूं। लेकिन एक बात कहता हूं कि इसमें जो भी शब्द मैंने रखे वो सब स्तुति वाचक रखे, स्तुति वाचक ही समझना उनका, उनका अर्थ उल्टा मत रखना। मैंने तुमको बुद्धू भी लिखा हो तो बुद्धू माने केवली करना, मूर्ख मत करना। अब जानते बुद्धू माने जैन धर्म में केवली होता है, परमात्म प्रकाश करो, योगचार करो, अरंग भगवान को बुद्धू लिखा है। और आज बुद्धू का क्या होता है, बौद्ध लोग थे ना तो बुद्ध को अपना गुरु मानते थे। एक समय बुद्धों का बहुत जोर था, तो जहां जाते थे जो लोगों को बौद्ध बना लेते थे, तो लोग बहुत सुरक्षा करते थे कि उसके पास मत जाना, उससे बात मत करना, नहीं तो तेरे को बुद्धू बना लेगा, मतलब बौद्ध धर्म में दीक्षित कर लेगा। उसका नाम था बुद्धू बनाना, और धीरे धीरे बुद्धू का अर्थ मूर्ख बनाना हो गया। ये भाषा विज्ञान का कमाल है ना। वो कहते हैं इतनी बात मैं जानता हूं कि कहीं किसी शब्द का कोई अर्थ होता हो तो तुम्हें उल्टा लगे तो तुम समझ लेना मैंने उस शब्द का प्रयोग स्तुति के अर्थ में किया है। मैंने तुम कुछ नहीं कर सकते ऐसा भी लिखा हो तो वो स्तुति के अर्थ में ग्रहण करना, निंदा के अर्थ में ग्रहण नहीं करना, समझ है ना। स्तुति बात तक है सब शब्द अर्थ या मैं सही हो गया। अब निज गुण करण अरंग हाथ को हे भगवान, जिन्हें भगवान के गुणों को वर्णन करना का आरंभ करना ये हास्य का हंसी बनने का पात्र है, अपने को हंसी का पात्र बनाना है, अपनी मजाक उड़वाना है। क्योंकि बायस को नहीं सिंधु तीरण काम है, कौओं का काम समुद्र को पार करना नहीं है। और कहीं भी ये बात आई थी ना, नहीं माँ गोखुर में नहीं सिंधु समावे, बायस लोक अंत नहीं पावे। तो भक्तन की रीति सनातन है, अभी हम क्या करें, भक्तों की यही रीति है, ऐसे कहते जाते हैं और बोलते जाते हैं, उसमें कोई बोलते रहते हैं बस क्या। तो भक्तन की रीति सनातन है यही, बस हमने यही कहा वो पंडित आता है, कहता तुम अंशक्कर काटो, हम चक्कर काटने लगते हैं तो वो कहता है कि छह चक्करों में लड़की आगे रहेगी, तो हम उसके पीछे मुझे चक्कर काटने लगते हैं, फिर वो कहता है साथ में तुम आगे हो जाओ तो हम आगे हो गए, हमें कुछ पता नहीं है क्या हो गया। हर चंद की रीति सनातन जान लीजिए, ऐसे हमने चक्कर काट लिया, ऐसा हमने इसे तबिना लिख दिया। क्षमा करो भगवंत शांतिपूर्ण नहीं, अब मैं आपसे माफी मांगता हूँ, ये बात नहीं कर मैं समाप्त करता।